समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो अलका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल यू लवली पीपल ट्यून्ड इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। द प्रोग्राम बिगिंस विद सम न्यूज हेडलाइंस। अलका,
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाले पुल की तरह होना चाहिए। कल रात संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक हित के लिए भारत अपना डिजिटल बुनियादी ढांचा साझा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के लिए संतुलित नियमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एक ऐसा वैश्विक प्रशासन जरूरी है जिसमें संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच न आए। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता एकजुटता शक्ति में निहित है, न कि किसी युद्ध भूमि में। शांति और सुरक्षा पर खतरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक ओर जहां आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष सुरक्षा पर खतरा नए संकट के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के भविष्य को लेकर विचार विमर्श में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का उदाहरण दर्शाता है कि सतत विकास सफल हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सफलता का ये अनुभव विकासशील और अविकसित देशों के साथ साझा करने को तैयार है। बहुपक्षीय वैश्विक संस्थाओं में सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संस्थाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में G20 में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भारत की प्रतिबद्धता है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैल्ड अ मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky on the sidelines of the summit of the future at UNGA in New York. Mr. Modi also met with Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan, and interacted with the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin in New York. Mr. Modi also held a bilateral meeting with Vietnam President Tu Lam. They deliberated on ways to strengthen bilateral cooperation as well as exchange views on important regional and global issues. The leaders also reaffirmed the importance of deep civilizational and cultural links between the two countries. Prime Minister Modi reiterated his sympathies and solidarity with Vietnam in the face of loss and damage caused by Typhoon Yagi earlier this month. The Vietnam President thanked the Prime Minister for timely supply of emergency humanitarian assistance and disaster relief by India under Operation Sadbhav.
जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में कल 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी के श्रीनगर और बडगाम जिले शामिल हैं। इस चरण में लगभग 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव में 61% से अधिक मतदान हुआ था। 40 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा।
द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ हैज रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाईएस्ट एडिशन ऑफ अराउंड 20 लाख नेट मेंबर्स इन जुलाई दिस ईयर, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 2.43% इन कंपैरिजन टू द सेम मंथ ऑफ द लास्ट ईयर। Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said this while releasing EPFO's provisional payroll data of July in New Delhi yesterday. He said that it is the highest recorded increase since payroll data tracking began in April 2018. The data indicates that around 10.52 lakh new members have enrolled during June this year. The highest growth was observed in the 18 to 25 age group, with around 9 lakh 10 additions.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से उज्बेकिस्तान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री कल और गुरुवार को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। श्रीमती सीतारामन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी हस्ताक्षर करेंगी। वित्त मंत्री उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के वित्त मंत्रियों और एआईआईबी अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इसके अलावा श्रीमती सीतारामन समरकंद राज्य विश्वविद्यालय और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री स्मारक का भी दौरा करेंगी। वो प्रबुद्ध भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी।
Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia said the government has set a target of installing 1 lakh 4G mobile towers by mid-term of next year. He said out of the set target, a total of 36,574 4G mobile towers have been installed so far. Mr. Scindia was briefing media on the achievements of his ministry during the first 100 days of the third term of the NDA government. He added that India has become the fastest 5G rollout nation in the world. Around 4.5 lakh 5G base transceiver stations have been installed across the country. In Kerala, a man and a woman were drowned and the car in which they were travelling fell into a river on the Kumarakom Vechur Road in Kottayam district last night. The documents recovered from the car indicated that the duo belonged to Maharashtra. The duo was driving along an unfamiliar region. There was pitch darkness when the mishap took place. Fire service personnel broke the car's window shields to extricate the bodies.
तीसरी बार सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के विकास के लिए एक मजबूत पहल की है।
गेटिंग ओवर टू सम स्पोर्ट्स न्यूज़ इन टेनिस, Indian tennis star Yuki Bhamri with his French partner Albano Olivetti have successfully reached the final of the Chengdu Open in China yesterday. The Bhamri-Olivetti pair defeated the second-seeded doubles pair of Ivan Dodig and Rafael Matos to enter the finals. Now Bhamri and Olivetti will be up against the top-seeded French pair Sadio Dombia and Fabien Robol in the summit clash.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं।
Yes, Alka. Starting with news from Chennai, Tamil Nadu Chief Minister N.K. Stalin inaugurated 2 neo-tidal parks in Thanjavur and Salem districts. Each has a seating capacity of 500 persons. These facilities each have a built-up area of 55,000 square feet with 3 floors and a ground floor. The Thanjavur facility has commitments for 30% of the capacity and was built at a cost of Rs. 30 crore. The Council for Leather Exports is organizing a Souls for Souls marathon run for drug-free society on the 29th of this month. The primary focus is raising awareness about drug-free society, besides promoting the brand image of footwear and leather industry. The marathon is organized with the support of the state government. The marathon is expected to not only raise awareness on the dangers of drug abuse and its impact on society, but also promote a healthy style. Bengaluru News Now, the Kaveri River Pipeline Phase 5 projects that will bring 775 MLD of additional water to Bengaluru City has been realized. The release of water will be launched by Chief Minister Siddaramaiah during the Dasara Festival inauguration event in Mysuru beginning of next month. Deputy Chief Minister with Bengaluru Urban Development Portfolio D.K. Shivkumar informed media persons after inspection of the project yesterday that this supply of additional Kaveri River water to Bengaluru will fulfill drinking water demands in 110 villages that were added within the city municipal corporation area in 2007. He informed that Kaveri Phase 5 water supply project is among the largest of its kind in India that will quench the thirst of around 5 million people in Bengaluru. Under this project, India's largest water treatment plant is installed at TK Halli with a capacity of 775 MLD. It also has a world-class cutting-edge flood control system. Hyderabad news now. The Telangana state government is planning to issue a single digital family card to every family in the state for extending ration, health and other welfare schemes. Chief Minister Raymond Reddy mooted this idea at a review meeting held at Hyderabad last evening. States like Rajasthan, Haryana and Karnataka have already issued cards by compiling complete details of the families. The Chief Minister instructed officials to study the implementation, benefits and difficulties associated with them and to prepare a comprehensive report. These family digital cards will facilitate the beneficiaries to get welfare schemes besides obtaining ration and health services anywhere in the state. They will have a health profile of each family member as it will be useful for medical services in the long run. Alka, over to you now for the rest of the news.
बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा ने कल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉ मिश्रा ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने ई वाहनों को अपनाने और एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में सूचीबद्ध कार्यों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। डॉ मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पराली जलाने को खत्म करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं को सख्ती से निगरानी करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री सेठ ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में एनसीसी कैडेट रिक्तियों को 3 लाख तक बढ़ाने के लिए एक योजना को स्वीकृति दी है। आने वाले वर्षों में इसकी संख्या 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विस्तार में एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के नांगलोई जल शोधन संयंत्र से निकलने वाली पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत कार्य के कारण सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक मोहन गार्डन, यूजीआर, बापरौला गांव, बक्करवाल गांव, दिशाऊ, यूजीआर, मकसूदाबाद, लक्ष्मी गार्डन, वीरेंद्र मार्केट, बजरंग एनक्लेव, उजवा यूजीआर और दौलतपुर यूजीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के बाद से विश्वविद्यालय में प्रचार जोर शोर से जारी है। इस दौरान चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। निर्देशों और हिदायतों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार डीयू के छात्रों के बीच पहुंचकर अपने मुद्दों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिजिटल कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया ने जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जेएमआई में डिजिटल कौशल, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना है। बात कर लें मुंबई की तो महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने कल मुंबई में डॉ होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में उसकी अध्यक्षता की और इस अवसर पर 1130 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने नव स्नातक विद्यार्थियों से अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करने को कहा। और वहीं ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में लापता लेडीज चुनी गई हैं। फिल्म की निर्देशक किरण राव ने आभार व्यक्त किया है और सुश्री राव ने उम्मीद जताई है कि ये फिल्म भारत की तरह ही दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के मुद्दों, उम्मीदों और आकांक्षाओं पर आधारित एक फिल्म ऑस्कर में देश की आधिकारिक प्रविष्टि बनती है तो ये उत्साहजनक लगता है। बात कर लें कोलकाता की तो अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन आज अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। और ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के वन मंत्री बीरवाहा हंसदा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर अलीपुर प्राणी उद्यान के समृद्ध इतिहास पर आधारित एक स्मृति पुस्तिका का अनावरण भी किया जाएगा। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और सुभद्रा के साथ। सुभद्रा, बात कर लें अब मौसम की, तो दिल्ली की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
Yes, talking about weather down south, Chennai is expected to have generally partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius, maximum will be around 35. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. Minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad again is expected to have generally cloudy sky with few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius.
और सुभद्रा, अचानक से गर्मी जो है वो बढ़ गई है।
आई नो देयर इज पोल्यूशन आल्सो हियर, यू नो।
बिल्कुल, और अभी कुछ दिन, दो तीन दिन पहले लग रहा था कि थोड़ी सी ठंड हो गई थी मौसम में सुबह और शाम की, लेकिन अचानक से जो ये गर्मी बढ़ी है, तापमान जो बढ़ा है, उसमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है।
यस, यू नीड टू बी, यू नीड टू स्टार्ट वेयरिंग योर मास्क आल्सो, यू नो, इट्स पोल्यूशन।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सजग रहें और मौसम को लेकर के हम लापरवाह न हों।
यस, दैट्स ट्रू। एंड अलका, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर इवेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल डे। The vibrant Indian culture, steeped in dance, drama and songs, has gone a long way, impressing and captivating fans across the globe. So friends, it is our Bollywood day today. So ladies and gentlemen, shake a leg or two, sing along with your favourite artists, party away, and also try to watch some of those memorable films that are here to stay. The date, that's 24th September, commemorates the release of Raja Harishchandra in the year 1913, the first full-length feature film. So happy Bollywood Day to all.
बिल्कुल, और सुभद्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं, हमने शुरू से ही देखा है कि इसमें वो फिल्में या तो समाज को देख के बनाई जाती हैं या उनको देख करके समाज बनता है। कई बार ये भी होता है कि जो चीजें हम देखते हैं हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। तो जो फिल्में थी हमारी, राजा हरिश्चंद्र की बात करें या जो मूक फिल्में थी, उसके बाद फिर बोलती फिल्में आई, फिर ब्लैक एंड व्हाइट का दौर आया, उसके बाद कलर का दौर आया, तो ये जो हमारा सिनेमा है उसकी जो यात्रा थी, उसका जो सफर था, वो बहुत ही रोचक रहा है।
यस, दैट्स ट्रू, एंड एंजॉय द डे फ्रेंड्स, यू नो, डांस अवे, दैट्स व्हाट आई सेड, लेट्स, यू नो।
बिल्कुल बिल्कुल,
इट्स लव बाय द वेस्टर्नर्स आल्सो, बॉलीवुड बाय द वे।
हाँ बिल्कुल, इसके गाने भी जो होते हैं या जो इसके संगीत, इसका नृत्य और इसका निर्देशन, ये सबके मन को मोहता है, चाहे हम पूरब की बात करें या हम पश्चिम की बात करें।
गुड फ्यूजन आल्सो इज हैपनिंग दीज डेज, राइट।
बिल्कुल, और बात कर लें अब इतिहास के पन्नों की, उसको पलटने का समय है और उन घटनाओं पर नजर डालने का समय है जो आज के दिन का इतिहास बन गई। तो आज 24 सितंबर है।
यू गोइंग टू स्टार्ट? ओके,
बिल्कुल। 1726 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नगर निगम और महापौर अदालतों को बनाने के लिए अधिकृत किया गया। वहीं 1932 में डॉ भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ। और वहीं 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई।
1529, सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट एंड हिज फॉर्मिडेबल ऑटोमन ट्रूप्स अराइव्ड इन वियना, मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट सीज, एंड ब्रिटिश एडवेंचरर जेम्स ब्रूक सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड लैंड्स अराउंड द सारावॉक रिवर फ्रॉम द सुल्तान ऑफ ब्रुनाई इन 1841. And so you already talked about Honda Motor Company. And 1938, this day, American tennis player Don Budge becomes the first tennis player to win a Grand Slam. And he was also the first player, male or female, to win all four Grand Slam events consecutively overall. And 1955 Alka, television history was made with the commencement of the Judy Garland special, which served as the inaugural episode of the anthology performance series known as Fourth Star Jubilee. This groundbreaking series brought together the unparalleled talent of Judy Garland and the innovative concept of showcasing top-tier entertainers.
बिल्कुल और 1965 की बात करें तो यमन को लेकर सऊदी अरब और मिस्र के बीच समझौता हुआ. वहीं 1968 में दक्षिण अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ.
एंड 1957 अलका द किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रेस्ली अनलीश्ड अ कल्चरल फिनोमिनन व्हेन ही रिलीज्ड हिज लेजेंडरी सिंगल जेल हाउस रॉक. दिस टाइमलेस रॉक एंड रोल क्लासिक नॉट ओनली डोमिनेटेड द चार्ट्स बट ऑल्सो अर्न द डिस्टिंग्विश्ड टाइटल ऑफ बिलबोर्ड्स सॉन्ग ऑफ द ईयर इन 1957. एंड 24 September 1961, the last episode of I Love Lucy is aired, created by and featuring Lucille Ball and her husband Daisy Arnaz. It ran for 10 long years.
और 1979 की बात करें तो घाना ने संविधान को आज ही के दिन अपनाया था. वहीं 2008 में कपिल देव भारतीय क्रिकेटर को, जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनको थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की थी. वहीं 2009 में देश के पहले चंद्रयान एक ने चांद की सतह पर पानी खोज निकाला था और 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था. और अब हम उन्हें याद कर लें जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या जिनका जन्मदिन है. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साहा को. इनका जन्म 24 सितंबर 1940 को कोलकाता में हुआ. वे भारत तथा एशिया की ऐसी पहली महिला तैराक थीं जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था. आरती साहा ने यह कारनामा वर्ष 29 सितंबर 1959 को कर दिखाया था और 1960 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. आरती साहा पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी. उनको हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है.
Tributes to a lady activist, social worker, freedom fighter, Bhikhaji Kama, who was born this day in 1861. Kama had a unique distinction of unfurling the first version of the Indian national flag, a tricolor of green, saffron and red stripes, with the words Vande Mataram written in the middle. This event took place at the International Socialist Congress held at Stuttgart, Germany in 1907. And friends, one of the principal composers of Viennese waltzes, Johann Strauss I, passed away this day in 1849. He started out as a viola player, then a composer of light music. Strauss' complete works, besides waltzes, gallops, polkas, quadrilles, marches and other dances, were published by his son, the very famous Johann Strauss II, in 1889. And of course, his works are remarkable for their rhythmic whirl, charm of melodic design, and they represent the style of Viennese dance music at its best. A snatch of the very peppy Radetzky March, Opus 228, composed by Strauss.
आज जयंती है आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक प्रताप नारायण मिश्र की. इनका जन्म आज ही के दिन 24 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ. लेखक, कवि, पत्रकार, निबंधकार और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित प्रताप नारायण जी हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक कहे जाते हैं. प्रताप नारायण मिश्र ने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई. मिश्र जी ने की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी. मिश्र जी द्वारा लिखे गए निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता थी. देश प्रेम, समाज सुधार और साधारण मनोरंजन आदि उनके निबंधों के मुख्य विषय थे.
One of the greatest American writers, Francis Scott Key Fitzgerald, simply called F. Scott Fitzgerald, from St. Paul, Minnesota, took birth this day in 1896. an author of novels, short stories, whose works are the paradigm writings of the jazz age, a term he coined himself, his most brilliant novel being The Great Gatsby, that he wrote in 1925. He finished four novels, left a fifth unfinished, and wrote dozens of short stories that treat themes of youth, despair, and age. And today is also the birth anniversary of Linda McCartney, American photographer, musician, and the first wife of the legendary former Beatle, Paul McCartney, and of course her artistic talents and contributions to the world of music continue to be celebrated. And friends, remembering the father of jazz funk fusion, Wayne Morris Henderson, whose birth anniversary it is today, American soul, jazz, and hard bop trombonist and record producer Henderson, he co-founded the soul, jazz, hard bop group, the Jazz Crusaders. Their funky, danceable renditions of songs by the Beatles, Carole King, and other artists extended their reach beyond jazz fans. Some foot-stomping news from the catalogue of Henderson.
और सुभद्रा हम आज याद कर रहे हैं फिल्म निर्देशक, छायाकार, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक असित सेन को।
हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से मैं
का जन्म 24 सितंबर 1922 को हुआ था और बांग्ला और हिंदी दोनों सिनेमा में इन्होंने काम किया निर्देशक के रूप में, और इन्होंने हिंदी और बांग्ला में 17 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया। बांग्ला में दीप, जलवे जय और उत्तर फाल्गुनी, और हिंदी की बात करें तो ममता, खामोशी, अनोखी रात और सफर फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है। असित सेन को बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी के लिए 1963 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, वहीं 1971 में हिंदी फिल्म सफर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, और 25 अगस्त 2001 को ये अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े।
Birthday of a celebrated jazz guitarist singer from New Orleans, Sasha Masakovsky. Her entire family members are musicians. Influences draw from jazz to electronic music to rock, and she performs often in fully improvised settings to help cultivate her exotic style. A song, an ancient one performed by Sasha, Dana, along with the backing band Starlight.
Dana, is there anyone finer in the state of Carolina? With the Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze into the eyes of Dinah. Oh, every night by the wife.
Former India Test cricketer Mohinder Amarnath celebrates his birthday today. His nickname is, of course, Jimmy, born this day in 1950. He will always be remembered for his man of the match performance in 1983 World Cup finals, scoring 26 runs and taking 3 for 12 with his useful medium pacer bowling in one of the cricket's greatest upsets.
सुभद्रा हम याद कर रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली प्रथम स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वादेदार को। आज उनकी पुण्यतिथि है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ इनका चटगांव में, और प्रीतिलता कलकत्ता के बैथ्यून कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कल्पना दत्त और नलिनी पाल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आई, और मात्र 21 वर्ष की उम्र में इस वीरांगना ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मिनी को। 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाली इस अभिनेत्री ने न केवल हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और रूसी भाषा में भी दमदार अभिनय किया और 1960 में इन्हें जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, वहीं 1966 में काजल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सम्मान प्राप्त हुआ।